आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती शुरू की, कैसे बाप की गोद से निकालकर काफले से मिलाया कुएं के रास्ते से, और जब काफला पानी की तलब में पहुंचा और फिर अजीज़े मिस्र के दिल में अलवली ने यूसुफ की मोहब्बत डाली, जिसने मुंह बोले बेटे की हैसियत से यूसुफ को अपने घर में रखा, फिर कैसे अलवली ने यूसुफ को गंदे माहौल से निजात दी, और फिर कैसे अजीज़े मिस्र को ख्वाब दिखाया जिसकी ताबीर के लिए लोग खुद यूसुफ को लेने के लिए आए। ये अलवली के ना नजर आने वाले काम है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब रब आपका वली बन जाता है, अल मौला बन जाता है, उंगलियां दांतों में दबी रह जाती है। ये हुआ क्या? ये कैसे हुआ? लोग तो न जाने क्या सोचे बैठे होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे इधर उधर दर दर के भिखारी हुए, कहीं से रुले। बच्चा गुम जाए तो अक्सर बिगड़ जाता है। यूसुफ गुमे, कहाँ पहुंच गया? ये अल्लाह की तदबीर है। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अपने मौला होने का सबूत देते हैं। कैसे यूसुफ को फिर ख्वाबों का इल्म सिखाया? उसने तदबीर से अल्लाह ने यूसुफ की मदद की। क्यों? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया, और जिसके मामला अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने ज़िम्मे ले ले और उसका मौला बन जाए, उसका वली बन जाए, फिर उसके काम इंजाम बखैर होते हैं। उस वक्त फिर दुआ की थी कि रब्बी क़दात ऐतनी मिनल मुल्की अंत वली ही फिर दुनिया वल आखिरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि बाप की गोद से लेकर दोबारा शाही ताज पहनने और सब बहन भाइयों और काफले वालों से मिलने और मेरे ख्वाब की ताबीर के मराहिल में मेरा अल मौला है अंत वली। जिंदगी के उतार चढ़ाव में घबराया ना करें, डोंट वरी, रिलैक्स्ड। अगर वो साथ है तो क्या मुश्किल। कैसे कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ तो जो मामला हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो दिन जो मेरे आग में गुजरे मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे, क्योंकि वहां रब का सलाम आता था। और इब्ने तैमिया क्यों कहते थे कि इन जन्नती माइश, मेरी जन्नत तो मेरे साथ है, मेरे दुश्मनों ने तो मुझ पर एहसान कर दिया, सबसे बेनियाज किया। तो लिखिए, अगर आप इस वक्त किसी दौर से गुजर रहे हैं, उतार चढ़ाव है, मत सुनाइए लोगों को कोई कुछ नहीं करता। माँ क्या करेगी? रोएगी और क्या करेगी? बाप क्या दुखी होगा? कह नहीं सकेगा। भाई बहन गैरत में आएंगे, कह दीजिए अंतवली जी, अपने दुख सुख अपने अलवली और अलमौला से कीजिए। ये मांगा करे कि तवफ्फनी मुस्लिमन, अल्लाह सब्र ना टूटे, अल्लाह खैर दे और नेक लोगों का साथ दे। दुनिया में अपने साथ अच्छा दिया, मौत के वक्त भी ना छोड़िए। अब देखिए कि अल्लाह ताला की ये विलायत और अल्लाह का मौला बनना, इसमें दो दर्जे हैं। एक होती है विलायतें आमा और एक होती है विलायतें खासा। मसलन दोनों को देख लेते हैं कुरान की रोशनी में। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, आयत लिख लीजिए अलनाम 62 में, अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक अला लहुल हुक्म व हुवा असरुल हासिबीन। फिर सब के सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो मौलाए हकीकी है उसकी तरफ लौटाए जाते हैं। खबरदार, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। तो अल्लाह अलवली की सरपरस्ती अपनी सारी मखलूक के लिए आम है, वो अपनी सारी मखलूक का वली है। पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के मामलात की निगरानी करता है, रिस्क का इंतजाम करता है, हत्ता कि एक मामूली से कीड़े को पत्थर में भी रिस्क अता फरमाता है। हर मखलूक की पैदाइश से मौत तक वही उसका वली है। ये तो है विलायते आमा, हर एक के साथ है, क्योंकि पैदा किया तो उसने पैदा करके छोड़ा तो नहीं है। और इसके बरक्स मोमिनीन के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल का वली होना, ये है विलायते खासा, एक खास अमर है। और जब अल्लाह किसी का ऐसे वली बन जाता है तो हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मेरा इससे ऐलान जंग है, जो बंदा किसी जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है इसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज़ फ़राइज़ की अदायगी है, और जो नवाफिल के जरिए मेरे करीब आने की कोशिश में रहता है हत्ता कि मैं इसे दुनिया में महबूब बना लेता हूँ, और जब मैं इसको महबूब बना लेता हूँ तो इसकी समात बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जब कभी वो मुझसे सवाल करता है तो मैं इसे ज़रूर अता करता हूँ, और जब वो मेरी पनाह तलब करता है तो मैं इसको पनाह देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है विलायत खासा। ये सही बुखारी की रिवायत है 6502। तो क्या पता चला कि ख़ास लोगों के साथ ख़ास विलायत है। अब ये आप में क्या समझे कौन कैसे कान बनता है, बस ये कह लीजिए कि अल्लाह ताला उस बंदे के साथ एक अजीब ताल्लुक बना देता है। फिर क्या पता चला कि जब अल्लाह किसी का वली बनता है तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। फिर उसकी आंख बनता है, यानी उसकी आंख गंदी चीज़ नहीं देखती। उसके कान बन जाता है, वो गंदी बात सुन नहीं सकता। गीबत सुन के तो औज़ु बिल्लाह घिन आने लगती है। खिलाफे शरा शैतानी आवाज़ें, नाच गाना, राग रंग रक्स और सुरूद उसको जहर लगता है। और फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, कैसे उसके काम आसान हो जाते हैं। वो जिस चीज़ को पकड़ता है वो सोने की बन जाए। पाँव बन जाता है अल्लाह कैसे उसके, कि उसको मस्जिदों की तरफ ले जाता है, उसको अल्लाह अपने रस्तों में ले जाता है। मुजाहिद बन जाता है, वो मुअल्लिम बन जाता है, वो दीन सीखने सिखाने निकल जाता है। और फिर जब वो कोई सवाल करता है तो मैं इसको अता करता हूँ। तो याद रखिए, विलायत खासा क्या कि बंदा फिर मुस्तजाबु दावत बन जाता है। और जब तो पनाह तलब करता है तो अल्लाह पनाह देता है। सारी दुनिया बेचैन, वो कहता है हसबी अल्लाह, ला मलजा वला मन जमीन का इल्ला इलैक। फिर वो गम हो, वो बीमारी हो, वो जरासीम हो, कोई बैक्टीरिया हो, वो कहता है मैं अपने रब की हिफाजत में हूँ। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नाम और हर हदीस के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ये मुकाम नसीब फरमा। आपने फरमाया, अल्लाह के दोस्तों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो कि अगर अल्लाह के नाम की कसम खा लें तो वो इसको ज़रूर पूरा कर देता है। ज़ुबान की निकली रब पूरी कर दे। ये भी बुखारी की रिवायत है 2703। हम कहते फुलां की ज़ुबान काली है, नऊज़ु बिल्ला, ये मुस्लिम बिलीफ नहीं है, ये पेगनिज़म है। काली वाली कुछ नहीं होती, अल्लाह को ला जाती है। देखिए आप भी तो अपने प्यारे की बात रख ही लेते हैं ना। आप कहते हैं उसने कह दिया, मैं क्या बोलूँ। कभी कभी बंदा इस तरह की बातें कर लेता है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुबहान तआला बंदे के साथ ये मामला करता है। तो अपने आप को इस मुकाम पे लाइए कि आप अल्लाह के नाम की कसम खा लें और अल्लाह आपकी कसम को पूरा कर दे। क्या बड़ी बात है, क्या खूबसूरत बात है। और ऐसे कई वाक़ियात हैं कि ज़ुबान से निकली बात रब ने निभाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो आप जानते ही हैं, कैसे अल्लाह के हुक्म से पहले ही कौम को क्या है कि अजाब आ जाएगा। और अल्लाह ने अजाब देना नहीं था, लेकिन अजाब के असरात पैदा कर दिए। और अल्लाह के नबी के दौर में ऐसे कई सहाबा थे। एक ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मेरी बहन का दांत नहीं टूटेगा। तो वाकई फिर ना टूटा। अल्लाह ने कसास का मुतालबा करने वालों के दिल में रहम डाल दिया, उन्होंने खुद ही उसको पीछे कर दिया और उनकी बात ना हुई। तो याद रखिए, ये ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं ना, इसको अपने साथ लिया करें। फिर आप समझेंगे इन सारी चीज़ों को कि किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला इन सारी चीज़ों को ज़िंदगी में लाकर फिर आपको मुझे इन चीज़ों का लुत्फ़ देते हैं। फिर लज़्ज़त मिलती है, फिर मज़ा बताता है, फिर इंसान सोचता है कि ये सारे मामलात करते कराते एक इंसान अपने रब के साथ कितना खूबसूरत ताल्लुक़ बना लेता है। फिर समझ आती है कि अल्लाह की ज़ात आपके साथ अपना मामला कितना हसीनो जमील कर देता है। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह के इस मामले को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह आपकी ज़ुबान को सच्चा करेगा। और सच बोलिए, बेकार ना बोलिए, कम बोलिए, किसी की हिमायत में बोलिए, किसी की मुखालफत में मत बोलिए। बस आप ये कुछ करते जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए इन सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते करते इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान की बातों को अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से आगे ले आएगा। फिर इसी तरह से अपने मोमिन बंदों के लिए विलायत खासा का जिक्र दुआ कनूत में मिलता है। आप लोग दुआ कनूत तो पढ़ते ही हैं ना, और जिस दुआ कनूत में ये अल्फाज आते हैं, अल्लाहुम्मा अहदिना फी मन हदैत, वाफिना फी मन आफ़ैत, व तवल्लना फी मन तवल्लैत। तवील दुआ है, इसका शुरू का हिस्सा आपके सामने रखा है। और ये भी अबू दाऊद की रिवायत किताबुल वितर में है, हदीस 1425, और निसाई में 1746। ये आपने क्या कह दिया, व तवल्लना फी मन तवल्लैत। आप इस दुआ में अल्लाह अलवली से हिदायत और आफ़ियत के साथ विलायत भी तलब करते हैं। और हम देखते हैं कि जब मैदान उहद में अबू सुफियान ने कहा कि हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए कोई उज्जा नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम को हिदायत कही कि तुम ये जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह ताला हमारा मौला है और तुम लोगों का कोई मौला नहीं। यानी इन मुश्किल हालात में भी हम अकेले नहीं, हम एक अजीम हस्ती की सरपरस्ती में हैं। अपने ऊपर लेकर सोचे, हमें तो जान के लाले पड़ जाए ऐसे वक्तों में। हम तो ऐसे वक्तों में खुद को क्या कहें और कैसे कहें और क्या मामला रखें? कैसे आप और मैं अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह के साथ जोड़ें और अपने ताल्लुक को महसूस किया करें? क्या, कैसे, कि कब, कैसे मेरे रब ने मुझे बेहतरीन तरीके से मेरा साथ दिया, मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है। और याद रखिए कि विलायत खासा के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अंबिया कराम होते हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे वली हैं जिनसे आगे बढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं, मुंतखब वली हैं, और अल्लाह अल वली की विलायत खासा के सबसे ज्यादा हकदार भी यही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी अल्लाह के दीन के लिए। इसलिए फिर अल्लाह जो अल वली है अपने अम्बिया को मुश्किल से मुश्किल आजमाइश में साबित कदम रखता है और इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। और इसमें देख लीजिए तो सबसे बड़ी ज़ात जिनको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के एतबार से अल्लाह ताला ने कितना वक्त दिया, कैसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जब अपने दीन के लिए चुना तो 950 साल की मेहनत और बिला किसी मुआवजे के, बगैर किसी चीज़ के, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपने काम का बना लिया। और जब फिर उन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, मेहनतें कर ली, जब उन्होंने अपने आप को देखा बेबस होते हुए तो क्या कहा कि अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं मगलूब हूँ बस तू मेरा बदला ले या तू मेरी मदद फरमा। फिर कैसे अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद की। वो अल वली ने अपने नबी की इस पुकार को सुना था और वो सुनने की देर थी। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पानी पानी कर दिया, वो सब जमा हो गए अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह की इस पुकार के ऊपर लब्बई कहने के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने आसमान से पानी और ज़मीन से जब तूफ़ान भेजा तो पानी पानी होने वाली कौम ख़त्म हो गई, तबाहो बर्बाद हो गई। और उसके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग को गुलो गुलजार कर दिया, काला इन्नी जाइलुकल लिन्नासि इमामा। देखिए ये विलायत ऐसे नहीं मिलती, मुश्किलात से मिलती है और मुश्किलात में जमे रहने से मिलती है। और ये इस तरह की खूबसूरत कैफियत होती है कि इसके बाद फिर एक नई जिंदगी होती है, फिर इमामत मिलती है। अल्लाह ने कैसे हज़रत इब्राहिम को फिर इंसानियत का इमाम बनाया और फिर हज़रत इस्माईल की फिदाकारी को रहती दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। आप अंबिया कराम के काफ़िले से तारुफ हासिल करते जाएं, आपको अल्लाह को अल मौला और अल वली बनाना या अल्लाह का आपके साथ ये ताल्लुक़ होना, ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ये नबियों के साथ अचानक मामले नहीं होते, इसके पीछे बहुत कुछ होता है, तो ये विलायत खासा है। आज कोई वलीउल्लाह होने का दावा करेगा तो उसको भी अंबिया कराम के नकूशे पा पे चलना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर गौर करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए इन सारी चीज़ों को बेहतर करेगा। कैसे याकूब अलैहिस्सलाम को अल वली ने उनके बेटे की खूबसूरत जिंदगी के जो एक ख्वाब से शुरू हुई और आखिर में फिर मिस्र के वजीरे खजाना की सूरत में पूरी हुई, कैसे वो ख्वाब के 11 सितारे और सूरज चांद सजदे करते हुए हकीकत में हुए? अल्लाह ने याकूब के बेटे की हिफाजत फरमाई, जो जुदाई थी वो भी दूर हुई क्योंकि अल वली ने अपनी सरपरस्ती में इन सारी मुश्किलात का हल निकाला, फिर इज्जत और तौकीर की ऊंची मसनद पे बिठा दिया। और हजरत मूसा का किस्सा तो सबसे ही अजीब है, कभी किसी ने ऐसी विलायत नहीं देखी होगी कि दरिया में डाल दिए गए जबकि शीरख्वार बच्चे थे, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी सरपरस्ती में इनको अपने और इनके दुश्मन के घर में ही बना दी, परवरिश करने का इंतजाम किया। क्या बात है, क्या सरपरस्ती है, क्या विलायत है। जो फिरौन मूसा के पैदा होने से खौफजदा था, अल्लाह ने मूसा को उसी के घर में पलवाया, क्योंकि वो रब कौन सा है, वो अलवली क्या हुआ कि जो फिरौन से डर जाए। और फिर जवानी में किस बेबसी के आलम में निकले और अलवली ने कैसे अपनी सरपरस्ती में लेकर रब्बी नीली मानजल तैलैया मिन खैरिन फकीर के अल्फाज सुनते ही रोटी कपड़ा मकान सब का इंतजाम कर दिया। घर भी मिल गया, रिश्ता भी हो गया, ठिकाना भी मिल गया, नबूवत मिल गई, मदियन में 10 साल गुजार दिए। और उसके बाद फिर जब वापस पलटते हैं फिरौन के मुकाबले पे, हर मौके पे अलवली की तरफ से خاص سرپرستی کا مظاہرہ ہوا، فرعون بھی غرق ہوا، موسیٰ کامیاب ہوئے۔ فرعون نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کا مولا کون ہے، اس کا ولی الامر کون ہے۔ تو جس کے پیچھے المولا ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے آ جائیے تو عیسیٰ علیہ السلام، کیا خوبصورت زندگی، ماں کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد ایسی کرتا ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کی عقل اور اختیار سے ایسی مدد باہر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہوگا کیسے، آپ کہتے چپ کریں، کر دے گا المولا، الولی ہے نا ساتھ۔ اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون تھا؟ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو الولی کے سب سے زیادہ محبوب نبی تھے، خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے لیے الولی کی ولایت کس درجے کی ہوگی کہ آپ اور میں اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ کرنا ہو تو ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی سعادت پہ غور کریں کہ جب نبی نے کنکروں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو تسبیح کی آوازیں سنی۔ سب اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور اللہ نے نبی کے ایک انگلی کو چاند کے دو ٹکڑوں میں بدلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور جب اسی ہاتھ میں اس نبی نے مٹی کے چند کنکر لیے اور کفار کی طرف وہ ریت پھینکی تو الولی نے دشمنوں کی آنکھوں میں ایک ایک ذرہ پہنچا دیا، کیونکہ الولی اپنے محبوب کی سرپرستی فرما رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، یا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے، تاکہ ازمال مومنوں کو اس سے اچھی طرح آزمانا۔ یہ سورہ انفال کی آیت 17 تھی۔ ان ساری باتوں سے سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ولی بنانا ہے تو انبیاء کرام، ان کو دیکھیے انہوں نے کیسے کیا۔ یہ ہے کہ اللہ پھر بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا لمس لگتے ہی آشوب چشم کی بیماری ایسے رفع ہوئی جیسے کبھی ہوئی نہیں، کبھی آنکھ دکھی نہ ہو۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، بخاری کی روایت ہے یہ 2942 میں، کیسے جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکل رہے تھے، اللہ نے نبی کے ہاتھ سے شفا دلا دی تو اللہ اپنے نبی کی سرپرستی فرماتا ہے اور اس کے ہاتھ میں غیر معمولی تاثیر عطا کرتا ہے۔ تو سوچئے پھر ان کی پوری زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ یہی نبی جب مکہ سے نکلتے ہیں، کس حال میں نکلتے ہیں، پیچھے بھی دشمن آگے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور الولی نے اپنی سرپرستی میں لیا، 3 راتیں غار ثور میں رکھی، اور کیسے پھر مدینہ میں جاتے ہی وہ تلا و بدر علینا کے ترانے سنتے ہوئے 8 سال میں اسی شہر میں واپس پلٹتے ہیں، تو ان فتحنا لک فتحا مبینہ کی صورت میں پلٹتے ہیں۔ تو آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو اللہ کے ساتھ ولایت کا اور مولا ہونے کا تعلق سمجھ آئے گا۔ جو بندے شکر گزاری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب سر اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھکائے رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک جملہ لکھیے بڑا بڑا اس نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا مان رکھتا ہے، وہ اگر اس کے نام کی قسم کھا کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر لیتا ہے، اور انہیں مایوس نہیں کرتا، ان کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص کا نام لکھیے، العلا الخضرمی، صحابی تھے، العلا عین سے لام الف حمزہ۔ ان کو اللہ کے نبی نے کسی غزوے کی مہم پہ بھیجا اور ان کو ایک خاص مقام پر جانے کی ہدایت کی۔ ان پر اور ان کے لشکر پر ایک ایسا وقت آیا کہ پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے، لق و دق صحرا تھا اور آسمان بادلوں سے خالی تھا۔ اسی حالت میں علا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم انی اقسم علیک ان تسقینا، اللہم یا علی یا عظیم یا ولی المؤمنین اغثنا واسقنا، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہم پہ پانی برسا، ہمیں پانی دے۔ اے اللہ تو علی ہے، تو عظیم ہے، تو ولی ہے مومنوں کا، ہمیں پانی پلا، ہماری مدد فرما۔ صحابہ نے واپس آ کر لوگوں کو قسم دے کر بتایا کہ ہم نے بادلوں کو دیکھا، وہ آسمان پہ جمع ہوئے، برسے، اور ہم نے پانی پیا اور پلایا، اور اس بات کی تصدیق کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم واپس تمہارے درمیان موجود ہیں۔ جی، اسد الغابہ کتاب ہے، صحابہ کے بارے میں عربی کی بک ہے، اس کی جلد 2 کے 534 پہ دیکھ لیجئے، انہی صحابی علا بن خضرمی کے تذکرے میں۔ تو یہ تو اللہ کے بندے تھے نا۔ عاصم بن قیس نے لے لیجئے ایک اور شخص، ان کا قصہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم و تدریس کے لیے ایک جگہ بھیجا، لوگوں نے بے وفائی کی، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ عاصم بن قیس نے دعا کی، اللہم انی اقسم علیک اللہ یمسنی الکافر، اے اللہ عزوجل میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں مجھے کافر نہ چھوئے۔ काफिर मुझे छू नहीं सके, कुछ ना करें। अच्छा, और फिर इन बेरहम लोगों ने आसिम को कत्ल किया। फिर इन्होंने सोचा कि इनकी लाश के जरिए अहले मक्का से कुछ फ़ायदा हासिल करें, लेकिन अल वली ने अपने बंदे की सरपरस्ती फरमाई, उनकी कसम को पूरा करने का इंतज़ाम किया। बहुत सी शहद की मक्खियाँ आईं और इनकी लाश को ऐसे छुपा दिया कि कोई करीब आए तो काट खाती। कुफार ने कहा, चलो रात भर इंतज़ार करते हैं, मक्खियाँ गायब हो जाएंगी तो हम रात को आकर आसिम की लाश को ले जाएंगे। लेकिन जब अलवली की सरपरस्ती हो तो कोई दुश्मन किसी का बाल बीका नहीं कर सकता। रात को पानी का एक रेला आया और इनके जिस्म को बहाकर दूर ले गया, कुफार की पहुंच से बहुत दूर, और अलवली ने अपने बंदे की कसम को पूरा कर दिखाया। ये मुस्तजाबु दावात लोग थे। इस तरह बरा बिन मालिक का वाक्या आता है। यमामा के मार्के में मुसैलमा कज़ाब से मुकाबला था। शिद्दत का मार्का गर्म था, मोमिनीन पर कमजोरी गालिब आने का खतरा था, और अहले लश्कर ने बरा बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हों से कहा, हमने सुना है कि अल्लाह के नबी आपको मुस्तजाबु दावात कहते थे, तो हमारी फतह की दुआ कीजिए। देखिए लीडर से दुआ कर रहे हैं। तो बरा ने आकर दुआ की, और उस दुआ में देखिए क्या यकीन और क्या प्यार और मान है। ये जो जुमला लिखा है ना, अल्लाह अपने प्यारों का मान रख लेता है, ये मान कोई छोटी चीज थोड़ी है, आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये भी कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उक्सिमु अलैक अंतन सुरनल यौम वन तजालनी अव्वल शहीदिन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ मैं फतह नसीब हो और मैं पहला शहीद हूँ। और फिर इस मार्के में सबसे पहले शहीद बरा बिन मालिक रदी अल्लाह होते और मोमिनीन फतह याब हुए। आप क्या समझते हैं? ये भी असदुल गाबा में मौजूद है, इस सहाबी के नाम पे पेज 244 जिल्द नंबर 1 है। और हजरत उमर के बारे में तो क्या बात करूं, मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, दरमियान में मामूल से हटकर जुमला बोलते हैं। ऐसे लगा सुनने वालों को जैसे किसी को हिदायत दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाते हुए एकदम किसी से कह दूं आवाज कम कर दे, ये कर दे, तो आपको अजीब लगेगा ना कि हमसे तो नहीं कहा, ये तो किसी और से कहा। तो हजरत उमर की जुबान पे लफ्ज थे, या सारियतुल जबल, और सारिया वो सिपा सलार है जो मस्जिद नबी से कोसों दूर मार्के रूम के लिए गए हुए हैं। और वो इस वक्त शशोपंज में थे कि किस तरफ से लश्कर रोम का मुकाबला किया जाए, और वहाँ इतने सैकड़ों मील दूर उनको उमर बिन खत्ताब जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे उस वक्त, उनकी आवाज़ मिलती है, या सारिया ए सारिया अल जबल, पहाड़ की तरफ चले जाओ। और वाकई वो पहाड़ की तरफ से होकर हमला करते और कामयाब होते हैं। लश्कर वापस आता है तो किसी ने अपनी फतह का हाल सुनाते हुए कहा कि उमर बिन अब्दुल खत्ताब के बर वक्त मशवरे से हमारी रहनुमाई और फतह नसीब हुई। ये है अल्लाह वलीयुल मोमिनीन। ये ऐसे वाकयात से सीरत भरी पड़ी है, हमने तो इससे आगे कुछ पढ़ा ही नहीं। ये भी उसी किताब से बता रही है, असदुल गाबा और हजरत उमर का तذکرہ, जिल्ड 2 के पेज 596 पे आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अल वली मोमिनीन का वली है, ऐसे वक्त में मदद के असबाब मुहैया करता है जो मुहाल और मुश्किल हालात होते हैं, क्योंकि वहुवा यतवल्लस सालिहीन, वो तो सालिहीन का वली है। जी, आराफ 196 में ये बात आती है कि अल्लाह सालिहीन का वली है। आप साले बनकर देखिए आपकी जिंदगी मिरेकल से भरती है। आप दूसरों को बताएं तो दूसरे तो पता नहीं आपको क्या बनाकर बैठ जाए, क्या पता नहीं कितने बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। और याद रखिए, फिर वो अपने लश्करों से मदद करता है जिनको हम जानते ही नहीं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, तुम अल्लाह के लश्करों को नहीं जानते मगर वो खुद जानता है, उसको पता है। सूरत मुद्दसिर के 31 में अल्लाह कहते हैं, मेरे लश्करों को भी मैं ही जानता हूँ। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह किसी का मौला बन जाए, वली बन जाए, तो उसको फरासत का वो नूर अता फरमाता है जिससे वो देखते हैं। वो ये हदीसे कुदसी की ये सारी मिसालें आप लिख रहे हैं जो बोल रही हूँ, हाथ बनने और आँख बनने और कान बनने की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो एक बार मजलिस में बैठे हुए थे, एक शख्स दाखिल हुआ। हजरत उस्मान ने कहा, एक आदमी आया है जिसकी आंख में जिना का असर है। अब ये बात सुनकर तो परेशानी होनी थी। ये वो शख्स था जिसने आते हुए रास्ते में किसी औरत को बुरी नजर से देखा था। आदमी ने हैरत से पूछा, मीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला है? क्या रसूलुल्लाह के बाद भी वही आती है? यानी आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो हजरत उस्मान ने फरमाया, नहीं, लेकिन मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो कोई नेक बंदा अगर आपके चेहरे मोरे से कुछ अंदाजे लगा ले तो ये मुमकिन है। और इसी तरह अबू मूसा अल अशरी बयान करते हैं, एक बार इराक में जा रहा था कि शदीद आग को देखा, सारे बागात को जलाती जा रही है, मगर दरमियान में एक बाग को कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा जिसका ये बाग है इसको मेरे पास लाया जाए। वो शख्स आया, कहते हैं कि तुम्हारा बाग कैसे सलामत रहा? उसने कहा मैंने अल्लाह को कसम दी है कि मेरे बाग का वही वलीउल अमर है। फिर अबू मूसा अल अशरी ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह के नाम की कसम खाकर कुछ कह दें तो अल्लाह ताला इनकी कसम का मान रखता है। अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए, बेकार ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, चापलूसी ना कीजिए, गलत ना बोलिए। आपको भी अल्लाह ताला इस तरीके से जुबान दे सकता है। और अवैस करनी के बारे में कौन नहीं जानता कि जिनसे दुआ कराने की हिदायत हज़रत उमर और हज़रत अली को खुद अल्लाह के नबी ने फरमाई और कहा उन्हें कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, अपना सलाम भेजा। ये वो सहाबी थे जिनको माँ की खिदमत करने की वजह से मुस्तजाब दावत का रुतबा मिला। तो क्या पता चला, क्या आप और हम मुस्तजाब दावत होने के लिए अल्लाह अल वली को ही अपना सरपरस्त समझते हैं, इसी पे भरोसा करते हैं, इसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं? और क्या एक दोस्त की जो जिम्मेदारी होती है वो अदा करते हैं? और याद रखिए कि दोस्तों की हैसियत में बहुत फर्क होता है। एक अमीर और एक गरीब में किसी मुश्तरक आदत की वजह से दोस्ती हो सकती है। उस्ताद और शागिर्द भी एक दूसरे के वली और दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने मुकाम पर रहकर अपने फ़राइज़ अदा करके एक दूसरे से वली का रिश्ता निभा सकते हैं। इस तरह वालदैन और औलाद के बीच में विलायत का रिश्ता हो सकता है, इसी तरह रब और बंदे में विलायत का रिश्ता है। जब बंदा अपनी बंदगी में किसी आला मुकाम तक पहुंच जाता है तो रब से अपनी दोस्ती का रिश्ता कायम कर लेता है फिर, और रब भी फिर अपने बंदे का वली होता है, क्योंकि अल्लाह वलीयुल मोमिनीन। तो शर्त यह है कि मुस्तजाबुद दावात बनने के लिए मोमिन और सालेह बनना शर्त है। प्लस वली के साथ करामत आती है, जैसे नबी के साथ मौजदा है। तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, फ़ायदा होगा, क्योंकि अल असमाउल हुस्ना आपको होता है तौहीद की इकसाम में से किस्म है। तो ये ना हो कि हम पूरे नाम कर दें और हमारी तौहीद दुरुस्त ना हो। तो करामतों का जहूर किन से होता है? लिखिए, करामतों का जहूर सिर्फ उनसे होता है जो अल्लाह अलवली के करीब होते हैं, और अल्लाह ताला के करीब वही होते हैं जो हकीकत में उसके फरमाबरदार होते हैं। तो लफ्ज़ करामत क्या है? करामत करम से है, खिलाफे आदत बात का जहूर में आ जाना। आम तौर पे जो काम ना हो वो हो जाए, और करामत वो चीज़ होती है जो अक्ल से बईद होती है, आम इंसान उसको करने से आजिज़ होता है। इमाम शाफी कहते हैं, जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो हवा में उड़ता है या पानी पे चलता है तो इसको वली ना मानो, ना इसकी करामत का यकीन करो, जब तक कि इसके अमल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना जांच लो। एक शख्स एक आलिम के पास आया, कहने लगा फुला आदमी पानी पे चलता है। आलिम ने कहा इससे का फिर क्या, मछलियां तो इससे बेहतर पानी पे चलती हैं। फिर इसने कहा फुला परिंदे की तरह उड़ता है। तो आलिम ने कहा परिंदा तो इससे भी अच्छा उड़ता है। फिर उसने कहा वो काबा में एक लम्हे में जाता है और वापस दूसरे लम्हे में आ जाता है। तो आलिम ने कहा इबलीस तो सारी दुनिया का चक्कर एक लहजे में लगा लेता है। यानी अहम बात समझिएगा, खिलाफ अक्ल आदतों का जहूर किसी की करामत पे दलील नहीं। हक बात यही है कि साहिबे करामत को कुरान और सुन्नत का हामिल होना पड़ेगा, वरना दज्जाल के पास बहुत सी करामतें होंगी। फिर सवाल पैदा होता है कि मौजजे और करामत में क्या फ़र्क है? तो मौजजा नबियों के साथ खास होता है, जो अपनी कौम के सामने अल्लाह के हुक्म से पेश करते हैं ताकि कौम को अल्लाह के नबी होने की तस्दीक करे और ईमान लाने वालों के लिए आसानी की राह मिले। इसके बरक्स करामत औलिया और सालेहीन के साथ मखसूस है। अल्लाह तबारक ताला अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए इनको खसूसी तवज्जो और रहमत से नवाजता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर वली करामतों का मुजाहरा कर सकता हो। वली अपनी ज़िंदगी में खुद से करामत का जहूर नहीं कर सकता, ये भी अल वली और अल मौला की रहमत और उसकी तौफीक से होता है। क्योंकि जो सच्चा वली होगा, हकीकी वली होगा, वो कभी अपनी करामत का ऐलान नहीं करता, वो बहाने नहीं ढूंढता अपनी करामतों के इजहार के, बल्कि अलवली के हकीकी दोस्त अपने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दरमियान मोहब्बत और आज़ व नियाज़ और ख़ुसूसी इनायत को कभी जाहिर नहीं करते, छुपाते हैं। दोस्तियाँ छुपाई जाती हैं ना, दो प्यार वाले चाहते हैं कि उनकी बातें कोई दूसरा सुने। तो मोहब्बत की यही खूबसूरती है कि मुहिब और महबूब के दरमियान इजहार मोहब्बत एक राज रहे। इसलिए आप किसी को वली नहीं कह सकते। तो सवाल यह है कि फिर हकीकी वली कौन है? तो इसके लिए तो कुरान ने इतने प्यार से सूरह यूनुस के आयत 63 में फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये आयत 62 है, और इसके आगे अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये शरायत है ईमान और तकवा। इसके बाद ये हैं औलिया अल्लाह, वो ईमान लाते हैं, ईमान की शरायत पे पूरे उतरते हैं, फिर फरिश्तों, किताबों, आखरत, तकदीर पर ईमान लाते हैं, और उनका ईमान बिल्कुल वैसा होता है जैसा अल्लाह को पसंद है। खुद साख्ता ईमान के दावे नहीं है, सारी शरायत पूरी करते हैं ईमान की। और कानू यत्तकून में हर चीज़ ए टू ज़ी, इस्लाम ए टू ज़ी, इबादात हों, मामलात हों, हर लम्हा, हर कदम, शबो रोज़ वो तकवा का दामन हाथ से छूटने नहीं देते। नमाज हो, रोज़ा, हज, ज़कात, फ़राइज़ पूरे करते हैं। अपने ईमान को सच्चा करने के लिए तकवा का फिर आला मेयार कायम करते हैं, गफलत नहीं बरतते, फ़राइज़ भी अदा करते हैं, नवाफिल की तरतीब जो अल्लाह ने बताई उसमें तब्दीली नहीं करते, मामलात में खड़े होते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ मुखलिस होते हैं, और अल्लाह की बजाय अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा को अपना मुंतहाए नज़र बना लेते हैं। तो याद रखिए, ईमान तकवा की राह पे चलने वाले लोग इस शान के वली होते हैं कि उनमें नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा होता है, खिदमत खल की बेहतरीन कोशिशें करते हैं। हज़रत उमर अपने खलीफा बनने से पहले का एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि अबू बकर जो थे जुमे को फजर की नमाज के बाद शहर से बाहर चले जाते, और जब वापस आते तो कपड़े मट्टी से अटे होते। एक दिन हजरत उमर ने उनका पीछा किया, देखा एक घर में दाखिल होते हैं और कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं। उनके जाने के बाद हजरत उमर इस घर में दाखिल हुए, ये घर एक बूढ़ी औरत का था जिसमें कह लीजिए कि 3 बच्चे और एक भेड़ थी। घर साफ था, कपड़े धुले हुए थे। हजरत उमर ने पूछा, ये सब कौन करता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती, कोई एक हर रोज आता है, खाना बनाता है, सफाई करता है, भेड़ का दूध होता है। ये बात सुन के उमर बिन खत्ताब रो पड़े, काबू बकर तुमने अपने पीछे आने वालों को मुश्किल में डाल दिया, ये है अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। आप सोचिए हजरत उमर के बारे में, जिनको जब वालिए मदीना और मुसलमानों का खलीफा बनाया गया, क्या फिक्रमंदी थी। अवाम की ज़रूरतें देखिए, जिम्मेदारियों का एहसास देखिए, कमर के ऊपर बेवाओं के लिए आटे की बोरियां उठा उठा के फिरने वाला उमर, ये था अलवली और वली के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स के रातों को गश्त करते हैं। एक रात हजरत उमर अब्दुलरहमान बिन औफ के साथ गश्त पे जा रहे थे। उमर ने अब्दुलरहमान रदी अल्लाह अन्हुमा से कहा, क्या ख्याल है आज हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस काफिले की निगरानी करें? और जब वो काफिले की निगरानी कर रहे थे तो एक खैमे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उमर ने उसके पास जाकर माँ से पूछा कि बच्चे को खिलाओ पिलाओ, इसको सुलाने की कोशिश करो। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर रोने लगा। फिर उमर ने माँ को तलकीन की। थोड़ी देर बाद फिर यही मामला हुआ, उमर को गुस्सा आ गया, माँ को बुरा भला कहने लगे। तो औरत ने जवाब में नाराज़गी से कहा, उमर का बुरा हो, इसने माँ का वजीफ़ा इस वक्त मुकर्रर किया जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे। तो बच्चा दूध पीता रहेगा तो मुझे वजीफ़ा कहाँ से मिलेगा? मैं तो इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि वजीफ़ा लूँ। ये जुमला सुनकर उमर, जो सही में वलीउल्लाह थे, कहने लगे, उमर अफसोस है तुझ पर कि तूने मुसलमान बच्चों को मार दिया होगा वजीफे को देर से देने की वजह से। उसी वक्त अब्दुलरहमान बिन औफ को मदीना भेजा और कहा, जाके ऐलान करा दो कि जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन से इसका वजीफा शुरू होगा। और फजर की नमाज में उमर बिन खत्ताब इस कदर रोए इस बात को याद करके कि नमाज अदा करना मुश्किल हो रही थी। नमाज मुकम्मल करने के बाद लोगों ने सुना कि उमर अपने रब से मुखातिब थे, ए मेरे रब, मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ, क्या तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया? कि मैं अपने नफ्स को मुबारकबाद दूँ, या ये कि तूने तौबा कबूल नहीं की तो मैं अपने नफ्स पर मजीद सख्ती करूँ। असदुल गाबा की रिवायत है, ये भी जिल 2598, हज़रत उमर के तस्करे। ये हैं वलीउल्लाह जिनको जवाब दे के एहसास रुला देता है। इसरा सईद रमदान इस्लामी तारीख के बड़े उलमा में से बामल आलिम थे, दीन के सारे उलूम पर इनको बहुत ही अबूर हासिल था। बुढ़ापे में अपने मस्जिद की तरफ जा रहे थे, एक शख्स इनका रास्ता रोक लिया, कहने लगा, मैंने सुना है कि आप वलीउल्लाह, मुझे अपनी कोई करामत तो बताइए। आज भी लोग यही चाहते हैं ना, करामतें पता चले, क्योंकि लोगों को करामतों से बड़ा मज़ा आता। खैर, वो चंद लम्हे रुके, फिर जवाब दिया, कहने लगे कि मेरी करामत यह है कि मैं अपने बेशुमार गुनाहों और ख़ताओं के साथ इस ज़मीन पर चल रहा हूँ, मगर ये ज़मीन मुझे निगलती नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर, अहया उलूम अद्दीन का ये रिवायत है। यानी आप इन लोगों के तस्करे पढ़कर अपने आप से शर्मिंदा हो जाते हैं, सच्ची जो बात है। और उमर कहा करते थे कि इराक में अगर एक बकरी का बच्चा भी भूखा रहा तो मुझसे कयामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह को अपना वली बनाने वाला मुसलमान अपने रब की तरफ भी पलट पलट कर आता है और अपनी खताओं की माफ़ी मांगता है, फिर अल वली की रहमत उनको ढांप लेती है। ये है सच्चे औलिया अल्लाह, इनकी निशानियाँ तकवा हैं। इन औलियाहुल्लमुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, बेशक इनके औलिया तो सिर्फ मुत्तकीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अनफाल 34 में अल्लाह ने ये बात कहकर हम सबको बता दिया। एक सवाल दे देती हूँ, क्या विलायत कमाई जा सकती है? क्या विलायत कस्बी है? कस्बी किसको कहते हैं? इक्तसाब, यानी वाहबी है कि कस्बी? अल्लाह किसी को पैदाइशी तौर पे वली बना दे या आप खुद बन सकते हैं, तो लिखिए। बड़ी प्यारी बात है कि विलायत का हसूल अमरे कस्बी है। इंसान अपनी कोशिश, मेहनत, सही जिद्दोजहद, अमल, तकवा से इस मुकाम को हासिल करता है। याद रखिए कि विलायत का मतलब किसी करामत का जहूर नहीं है, बल्कि ये दिल की सकीनत और नेकी पे सुरूर और गुना और खता पे पशेमानी और फिर तौबा और इनाबत के बाद जो लुत्फ और रहमत मिल जाती है ना, इसको विलायत कहते हैं। खिला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून, ये कैफियत है दिल की, मुतमईन हो आज भी, गम तो नहीं, फिक्र तो नहीं, हौल तो नहीं रही, तो आप भी अल्लाह की वलिया हैं। आज के इस दौरे पर फितन में अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह विलायत के दर्जे पे आ सकती हैं। अपने अमाल को खुद देखिए और हर किस्म के हालात में अल्लाह की रजा चाहिए, उसके फैसलों पर किसी तरद्दुद का इजहार ना करें, फिर आपको अलवली की विलायत का असल रंग दिखेगा। और अगर हम में से कोई ये एहसास रखता है कि इसको अल्लाह ताला की विलायत हासिल है, या अगर तमन्ना है, तो फिर मेहनत कीजिए, करने के कामों में यही है, अमल के नुकात में यही कीजिए, पूरी मश्क कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फ़राइज़ पूरे करें, क्योंकि जब तक फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे ना तो नवाफिल कोई नहीं कबूल। ये हमारे उम्मत का एक बहुत बड़ा डायलमा है, फ़राइज़ छोड़कर किसी एक रात सारी रात नफल पढ़ते रहते हैं। और कसब और मेहनत से दुनिया वालों की सरपरस्ती हासिल होती है, तो अल्लाह तो फिर अलवली है, फातिरुस समावाती वल अर्द है। जब आपका दिल आपको पुकारे तो ये करें, तो करने के कामों में फ़राइज़ की अदायगी पूरे खलूस नीयत के साथ आसान तरीके से, फिर कसरत हो नवाफिल की और नवाफिल को छुपा के कीजिए, रियाकारी में मुब्तला ना हो। फिर तीसरी बात है कि खिदमत खल कीजिए, बेवाओं, यतीमों, मिसकीनों, हाजतमंदों की सरपरस्ती करें, तारीफ और बदले की तवक्को रखे बगैर। फिर इसी तरह एक काम कीजिए, और वो क्या कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं तेरे बंदों की सरपरस्ती करती हूँ, तू मेरी सरपरस्ती फरमा, तू मेरा अलमौला बन जा, मेरे मामलात का वली बन जा। फिर इसी तरह दीन के मामले में मुसाफकत इख्तियार कीजिए, नेक आमाल में जल्दी कीजिए, वफी ज़ालिक फल यतना फसिल मुतनाफिसून। सूरत मुतफ़िफ़ीन के आयत 26 में अल्लाह कहते हैं कि रग़बत करने वाले फिर इसी में रग़बत करें, दुआ करें कि अल्लाह आपको मुझे इसका शौक़ लगा दे। फिर इसी तरह एक काम कीजिए, अपने अमाल की जांच पड़ताल करें, तकवा की रविश पे आगे बढ़ते रहिए, जिद्दोजहद और सही से गाफिल ना हो, और फिर अपना मुहासबा करते रहें, अमाले सालिया की वजह से उजब और खुदपसंदी में मुब्तला ना हो, लोगों से अपनी तारीफ सुनकर अपने गुनाहों को याद रखें। ये भी लिख लें, हवा भर जाती है गुब्बारे की तरह जब चार लोग हमारी तारीफें करने लग जाएं। और हर मामले पे अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, उसको वलीउल अमर बनाकर मुतमईन हो, और कहिए हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, नेमल मौला व नेमन नसीर। जब आप अल्लाह ताला के साथ इतने लाड करने वाले बन गए, तो उसके बाद तो आप देखेंगे कि आपको खुद पता चलेगा, किसी का पल्लू पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई रटी रटाई दुआएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दिल के अंदर अल्लाह से प्यार मोहब्बत रखें, फिर देखेंगे। और दुआएं लें लोगों की, शायद किसी की दुआ आपको भी वली बना दे। पेबंद लगे हुए लोग कभी हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह उन हाथों को नीचे नहीं करता। सरापे सवाल बन जाए लोग आपके लिए, सरापे दुआ बन जाए लोगों को, इतना फैज़ दीजिए। आजजी लाइए, अपने जाहिर बातिन को अच्छा कीजिए, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपको हर चीज़ से दूर करेगा। और जितना ज़्यादा आपके अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत बढ़ती जाएगी, अल्लाह ताला सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाएगा। तो अलवली की और अलमौला की और अलवाली की दोस्ती आपकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को डाल दे। और एक बड़ी बात लिख लें, किसी के सोने चांदी के बर्तनों को मत देखिए, किसी के हाथों में पहने कंगन ना देखिए। दुनिया की दौलत आपके लिए मिट्टी के कंकर बन जाए, और जब अल्लाह अलवली बन जाएगा तो फिर उसके बाद तो बाकी बातें बहुत पीछे पड़ जाएंगी। अल्लाह से ये दुआ है मेरी भी, और आप भी कीजिए अपने लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमें इस दुनिया में अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत का लुत्फ़ चखा, ये मज़ा लिए बगैर मैं दुनिया से ना जाऊं। और जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर अपने आप को जमाते रहेंगे ना, आप अपने अंदर एक सुकून पाएंगे। और ये भी दुआ करती हूँ जितनों ने सुना, जो साथ हैं, जो इस सारी सीरीज़ में हमारे साथ हैं अल्लाह, तो उनको भी ये खूबसूरत दोस्तियाँ अता फरमा। हमें दूसरों के पीछे लगने की बजाय हमें तेरे नबी के नक्शे पा पे चलते चलते उनके सहाबा और फिर उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, आइमे कराम, मुहद्दिसीन कराम और वो नेक वली जो गुजर गए, जो हकीकी मानों में अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून थे, अल्लाह में उनके नक्शे कदम पे चला। आप देखिए कि हम कहते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनमत अलैहिम। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अनमत अलैहिम में शामिल फरमा। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के इन नामों पे गौर करते जा रहे होंगे, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के गम में रो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा कि जाओ पूछ के आओ कि मोहम्मद आप क्यों रो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अल्लाह ताला हर बात को खूब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जब जिब्राइल को भेजा तो पता चला कि आप अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। उस पे आपने फरमाया था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में ज़रूर राज़ी कर देंगे, आपको गमगीन ना करेंगे, क्योंकि अल्लाह अपने दोस्तों के हाथों को खाली नहीं लौटाता। तो अल्लाह आपका मेरा साथी है। अब अल्लाहु यासीमुका मिनन्नास, सब ने नबी की जान लेने की कोशिशें कर ली। हज़रत आयशा कहती कि अल्लाह के नबी की हिफाजत की जाती थी, और जब यह आयत उतर गई कि वल्लाहु यासीमुका मिनन्नास, तो सब हिफाजत ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी ने खैमे से सर बाहर किया और कहा कि अब तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह ने कैसे गम को खुशी में बदल दिया। बस अल्लाह ताला आपके मेरे काम सवारे, वो बड़ा बाहया है, मुअज़्ज़िज़ है, हाथ फैलाएंगे तो खाली नहीं छोड़ेगा, वो बहुत कदर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात हदीस में जो आती है, चंदा हदीस इस मौजू की ले लीजिए जाते जाते, क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा, तुम्हारा फ़क्र दूर कर दूंगा, यानी तुम मेरे तो होकर देखो मैं तुम्हारे काम कैसे संवारता हूँ। फिर अल्लाह अपने वली को दुनिया की मोहब्बत से भी बचाते हैं और मखलूक के दिलों में इसकी मोहब्बत डालते हैं, फरिश्तों के लिए मोहब्बत डाल देते हैं, और इसी तरह फिर अल्लाह वाकई ऐसे बना देता है कि उनको देख कर रब याद आता है। फरमाया कुछ लोग उनको देख कर रब याद आता है। आपने फरमाया कि क़्यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, इनके चेहरे नूरानी कर देगा, इनके लिबास नूर के होंगे, जबकि सब लोग खौफजदा होंगे, इनको गम नहीं होगा। इसी तरह से जब किसी से मोहब्बत हो तो उसको बताइए कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और दूसरों को फिर उसी मोहब्बत का बताते हैं, और इसी तरह से फिर दूसरों के ऐब नहीं तलाश करते। आपने भी इंशाअल्लाह दोस्तियों का हक अदा करना है, जहाँ दूसरे की बेइज्जती हो रही हो आपने उसका दिफा करना है जैसे अल्लाह अपने बंदों का करता है, और अल्लाह ताला के साथ मामला अच्छा रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आपसे मुझसे राज़ी हो। और सबसे बड़ी बात, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सूरत हमीम सजदा की आयात बताती हैं कि अल्लाह के जो वली होते हैं उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनको खुशखबरियाँ देते हैं, मौत के वक्त भी, कब्र से निकलते हुए भी, मैदान हशर में भी। और इसके बरक्स जो शैतान की विलायत में आ जाते हैं वो तो ऐन वक्त पे छोड़ जाता है, जैसे सुराका बिन मालिक मैदान बदर से भाग गया। तो अल्लाह की विलायत कब्र तक रहेगी, उसके बाद जन्नत तक मिले जाएगी। अल्लाह के नबी एक दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अल अज्ज़ि वल कस्ली वल जुबनी वल बुख्ली वल हरमी वल अज़ाबिल कब्री, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा। और इसी तरह वल हुस्नी वा औज़ु बिका मिन अल अज्ज़ि वल कस्ली وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یہ دو تین دعاؤں کا مجموعہ ہے، ابو داؤد کی روایت میں بھی آپ کو ملتا ہے. تو جب اللہ سے ولایت کا تعلق محسوس ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اسی چیز کو. اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھی ڈال دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.